ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा ने विभिन्न पांच प्रतिस्थापन विधेयकों को बहुमत से किया पारित। पांचों विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकृत भी हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा की बैठकों को अलग अलग किया संबोधित। चैत 15 के विरोध प्रदर्शन वाली घटनाओं का जिम्मेदार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को बताते हुए कहा, किसी को नहीं मिलेगी उन्मुक्ति। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के हीरक महोत्सव के संदर्भ में आज आधुनिक गीत संगीत प्रतियोगिता हुई आयोजित। प्रतियोगिता अंतर्गत गायन में संखुआ सभा के परेश राय हुए प्रथम और फ्रांस के दक्षिणपंथी नेत्री मरीन ले पेन को यूरोपियन यूनियन के कोष गबन के मामले में अगले 5 साल तक के लिए सार्वजनिक पद धारण पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित विभिन्न पांच विधेयकों का प्रमाणीकरण किया है। उन विधेयकों में सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2081, सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन विधेयक 2081 व निजीकरण प्रथम संशोधन विधेयक 2081 और आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश अभिवृद्धि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2081 शामिल हैं। बता दें कि राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने इन विधेयकों को बहुमत से पारित किया था। आज की बैठक में सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने सभी विधेयक बहुमत से पारित होने की जानकारी दी थी। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 25 के सोमवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि चैत 15 को तीनकुने में हुई घटना में शामिल किसी को भी उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। आज संघीय संसद की दोनों सभाओं को अलग अलग संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पूर्व राजा के समर्थकों के आंदोलन के क्रम में हुई घटनाओं का जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सब के लिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत घर, सार्वजनिक भवन, संचार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना, लगायत में तोड़फोड़ और डिपार्टमेंटल स्टोर में तोड़फोड़ और लूटपाट घटना में शामिल लोगों के संबंध में छानबीन शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ लूटपाट के साथ साथ इंसान को जिंदा जलाने जैसे कार्य निंदनीय और खेदजन्य हैं। कुलमान घिसिंग की नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पद से बर्खास्तगी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर अतिरिक्त चर्चा परिचर्चा किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि ये समय मौजूदा संविधान की रक्षा, जनता द्वारा लड़कर लाए गए अधिकारों की रक्षा, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा और इनके सफल क्रियान्वयन का है, उन्होंने कहा कि समूचे सदन को एक होने की जरूरत है। उन्होंने कल से होने जा रहे अपने थाईलैंड दौरे के संबंध में भी सदन को जानकारी कराई। बता दें कि नेपाल के किसी कार्यकारी प्रमुख के रूप में थाईलैंड का यह दौरा 65 सालों के बाद होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाली भ्रमण टोली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत कर चैत 23 को स्वदेश लौटेगी। प्रतिनिधि सभा ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की रिपोर्ट समेत संवैधानिक परिषद संबंधी संशोधन विधेयक 2079 को संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने पेश किया था। इस विधेयक के पारित होने के साथ अब संवैधानिक निकायों में पदाधिकारी नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने चैत 15 को काठमांडू के तीनकुने में हुई घटना पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि चैत 15 को हुई तीनकुने विरोध प्रदर्शन की घटना में मारे गए संचारकर्मी सुरेश रजक के परिवार को सरकार मदद मुहैया कराएगी। आज प्रधानमंत्री निवास पालवाटार में रजक के परिजनों से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने रजक का अंतिम संस्कार करने का आग्रह करते हुए कहा कि सुरेश की पत्नी सुजन को रोजगारी लगायत मदद पर सरकार का ध्यान रहेगा। उन्होंने रजक के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति समवेदना जताई। रेडियो नेपाल के हीरक महोत्सव 75वें स्थापना दिवस के संदर्भ से जोड़कर आयोजित आधुनिक गीत संगीत प्रतियोगिता अंतर्गत गायन में परेश राय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार दीपिका श्रेष्ठ द्वितीय स्थान पर और पूर्ण बहादुर विश्वकर्मा तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को क्रमशः 40,000, 30,000 और 20,000 नकद राशि के साथ साथ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा चंडी प्रसाद काफले को उत्कृष्ट संगीतकार और होम न्योपाने को उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में सम्मानित किया गया। इन दोनों को 25,000 नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में विभिन्न कलाकारों के 20 गीतों को चुना गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल को राष्ट्र और राष्ट्रीयता के पक्ष में सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। समारोह में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय एकता आपदा के समय नागरिकों की जीवन रक्षा और समृद्धि के लिए रेडियो नेपाल को पारंपरिक शैली से बदलकर नागरिक केन्द्रित प्रसारण की ओर अग्रसर किया जा रहा है। मौके पर मंत्री गुरुंग ने रेडियो नेपाल के लोगो वाली एक विशेष डाक टिकट को भी जारी किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजु दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद की जिम्मेदारी विष्णुराम न्यौपाने को दी गई है। पीएसपी नेपाल संचालक समिति की बीते शुक्रवार की बैठक ने न्यौपाने को सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद पर नियुक्त करने का निर्णय किया था। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नेपाल को क्षेत्रीय आईटी हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी एपीटी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा आज आयोजित 34वें मीटिंग ऑफ द एपीटी वायरलेस ग्रुप के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्रालय निजी क्षेत्र से सहकार्य करने के लिए तैयार है। रवि लामिछाने ने फिर से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की केंद्रीय समिति की आज हुई पहली बैठक में रवि लामिछाने को पुनः पार्टी सभापति का दायित्व सौंपने का निर्णय किया गया। सहकारी ठगी सहित चार आरोपों में अदालत में मामला दर्ज होने के बाद लामिछाने को पार्टी सभापति पद से हटना पड़ा था। तब से डोल प्रसाद अर्याल कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। अब पार्टी ने लामिछाने को फिर से सभापति की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्यौहार ईद उल फित्र आज पूरे नेपाल में नमाज पढ़कर और खुशियां बांटकर मनाया गया। एक महीने तक रोजे रखने और दान दक्षिणा देने के बाद मुस्लिम समुदाय इस दिन को खुशी और उत्सव के रूप में मनाता है। ईद उल फित्र को खुशियां बांटने का दिन माना जाता है। आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खुले मैदान या नजदीकी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद परिवार और दोस्तों से मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस दिन बड़ों से आशीर्वाद लेना और छोटों को आशीर्वाद देना एक प्रमुख परम्परा है। साथ ही विभिन्न मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने का भी रिवाज है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल की कुल आबादी का 5.9% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। ईद के मौके पर सरकार ने आज देशभर सार्वजनिक छुट्टी दी थी। अर्घाखांची की भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नंबर 7 पानडाड़ा में लगी आग में एक घर और 3 तबेले जलकर नष्ट हो गए। आग लगी में एक भैंस, एक बछड़ा, 9 बकरे बकरियां और 59 मुर्गी मुर्गियां जलकर नष्ट हो गए। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय अर्घाखांची के डीएसपी चक्र बहादुर मल्ल ने दी। प्रतिकूल मौसम के कारण हवाई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अनुसार मौसम में आई खराबी के कारण विजिबिलिटी कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के करीब दर्जन विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये जानकारी विमानस्थल के प्रवक्ता रिंजी शेरपा ने दी। बता दें कि जजीरा एयर, एयर इंडिया और फ्लाई दुबई के विमान डाइवर्ट हुए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस की एक अदालत ने आज यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दक्षिणपंथी नेत्री मरीन ले पेन को दोषी करार दिया है। अदालत ने मरीन ले पेन को तुरंत प्रभाव से 5 साल के लिए सरकारी पद संभालने से रोक दिया है और 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि ले पेन अब सन 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। ले पेन और उनकी नेशनल रैली पार्टी के 8 सदस्यों को यूरोपीय संघ के धन गबन का दोषी करार दिया है। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद आज भी बचाव कार्य जारी है। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुताबिक यहां मरने वालों की संख्या 2000 के पार जा चुकी है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने बताया कि भूकंप के कारण 2056 लोगों की मौत हुई है, 3900 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 270 लोग अभी भी लापता हैं। ज्ञात हो कि म्यांमार से जानकारी पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां के सैन्य नेतृत्व का राष्ट्रीय आपदाओं से हुए नुकसान के पैमाने को दबाने का इतिहास रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने म्यांमार में भूकंप से निपटने के लिए $80 लाख की सहायता की अपील की है। संगठन के एक प्रवक्ता ने बताया है कि म्यांमार के अस्पताल भी भूकंप से प्रभावित हुए हैं, वहीं घायलों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पतालों पर काफी दबाव भी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा ने विभिन्न 5 प्रतिस्थापन विधेयकों को बहुमत से किया पारित। 5 विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकृत भी हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा की बैठकों को अलग अलग किया संबोधित। चैत 15 के विरोध प्रदर्शन वाली घटनाओं का जिम्मेदार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को बताते हुए कहा, किसी को नहीं मिलेगी उन्मुक्ति। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के हीरक महोत्सव के संदर्भ में आज आधुनिक गीत संगीत प्रतियोगिता हुई आयोजित। प्रतियोगिता में संखुआ सभा के परेश राय हुए प्रथम और फ्रांस की दक्षिण पंथी नेत्री मरीन ले पेन को यूरोपियन यूनियन के कोष गबन के मामले में अगले 5 साल तक के लिए सार्वजनिक पद धारण पर लगाई गई रोक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।